हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रिया सिंह है और आज मैं आपके साथ आपकी किताब सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करूंगी, जिसका नाम है भारत का संविधान। और अभी तक हमने इस चैप्टर के कुछ पोर्शन को केवल रीड किया था और इसके फर्स्ट पैराग्राफ को डिटेल में समझा था। आज हम वही कंटिन्यू करेंगे लेकिन सेकंड पैराग्राफ को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि हम इसको रीड कर चुके हैं तो आज फिर से इसको रीड करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप फटाफट से पेज नंबर 85 ओपन करिए और इसके सेकंड पैराग्राफ पर ध्यान दीजिए, जहां पर लिखा है भारत अपने प्राचीन गौरवपूर्ण एवं प्रेरक अतीत के बाद मध्यकाल से ही विदेशी आक्रमणों का शिकार रहा है। अभी तक हमने देखा कि संविधान से हम क्या समझते हैं, संविधान क्यों जरूरी है, देश के लिए, देश की और देश की जनता के द्वारा बनाया गया ये संविधान किस तरीके से फायदा पहुंचाता है, लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है, आज का जो संविधान है या आज का जो लोकतंत्र है वो पहले के संविधान लोकतंत्र से कैसे डिफरेंट है, हमारी दुनिया में, पूरे विश्व में कितने प्रकार के संविधान हैं, भारत का संविधान लिखित है यानी रिटन है या फिर अलिखित, जिसको हम अनरिटन भी कहते हैं। मैंने आपको एक एक्टिविटी करने के लिए दी थी स्टूडेंट्स, कि आपकी किताब में 4-5 कंट्रीज मेंशन की गई हैं जो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में फॉल करती हैं। मैंने आपको कहा था कि आप इन 4-5 कंट्रीज को छोड़ करके और कंट्रीज का पता लगाइए इंटरनेट की हेल्प से, कि कौन कौन सी और कंट्रीज हैं जो कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आती हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है, इसमें हमें ये पता चलता है कि कैसे भारत का जो एंशियंट टाइम था यानी प्राचीन समय, जिसको हम 11th सेंचुरी से पहले काउंट करेंगे, उस समय में इंडिया की रेपुटेशन, इंडिया की इमेज इतनी अच्छी थी, यहाँ पर वेल्थ इतना फ्लरिश्ड था कि बाकी सब जो कंट्रीज थी हमारे आसपास की या दुनिया की हर वो कंट्रीज जहाँ से हम ट्रेड किया करते थे या फिर जहां पर हमारे कंट्री के वेल्थ के एग्जिस्टेंस का पता था, उन सभी कंट्रीज की नजर हमारे भारत पर थी, क्योंकि इसका प्राचीन समय बहुत गौरवपूर्ण और प्रेरक रहा है। इसीलिए मिडिवल इंडिया में, मध्यकाल में कई सारे विदेशी आक्रमण हुए यानी फॉरेन अटैक्स हुए। कई अटैक्स ऐसे हुए जिन अटैक्स की वजह से यहाँ पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई अटैक्स ऐसे भी हुए जिन्होंने बहुत क्रूअल तरीकों से इंडिया पर रूल किया। उन लोगों ने हमेशा ये कोशिश की कि कैसे इंडिया को एक्सप्लॉइट किया जाए इंस्टेड ऑफ सेटिस्फाइंग पीपल हियर। उन लोगों ने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि यहाँ की जनता को संतुष्ट किया जाए, बट उनका एक ही मोटो था कि यहाँ की संपत्ति को लूटना है और यहाँ पर अपना धर्म विस्तार करना है, जिसको हम इंग्लिश में रिलीजियस एक्सपेंशन कहते हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो मुस्लिम रिलीजन हो। और इसीलिए इसी सीरीज में जो इंडिया था वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी का टारगेट बना, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटेन की एक छोटी सी कंपनी कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई थी, वो 1600 में ट्रेड के लिए इंडिया आई हुई थी। लेकिन समय ढलते ही यानी ग्रेजुअली जो उनका ट्रेड का इंटेंशन था वो यहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन में इंटरफेयर करने से चेंज हो गया, क्योंकि अब उनको साफ साफ पता लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जो कि वो फिलफिल कर सकते हैं, और इसीलिए अब उन लोगों ने यहाँ पर जो पॉलिटिकल डिसीजंस हुआ करते थे उन सभी पॉलिटिकल मैटर्स पर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। सबसे पहले 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और इसी युद्ध के बाद भारत का एक बड़ा हिस्सा यानी इंडिया का एक लार्ज एरिया कंपनी के अंडर चला जाता है। तो ये डेट आप याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। प्लासी वेस्ट बंगाल में है और बक्सर बिहार में आज के नॉर्दर्न इंडिया में लोकेटेड है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इन दोनों जगहों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब कि ये जो एरिया रहा होगा आज का बिहार वेस्ट बंगाल उड़ीसा ये वाकई में बहुत फ्लरिश्ड रहा होगा। तभी तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले यहाँ पर युद्ध करके यहाँ के कारोबार को संभाला, राजनीतिक मामलों पर अपना कब्जा किया। अब धीरे धीरे प्रश्न जो था कंपनी के सामने उठ रहा था कि भारत पर शासन कैसे करें, क्योंकि उनके मानने के अनुसार भारत पिछड़ा हुआ देश था और उनका टारगेट ये था कि वो भारत को आगे बढ़ाएंगे। तो उन लोगों ने डिसाइड किया यानी कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये डिसाइड किया कि इंडिया पर रूल करने के लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करेंगे, और उस टाइम पर लंबे समय तक यानी फॉर लॉन्ग टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियंस के लिए रूल्स बनाए थे, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 ईस्ट इंडिया एक्ट, 1909 का भारत शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो एक तरफ ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, और दूसरी तरफ जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं भारत में राजनीतिक जागरण हो रहा था जिसको हम पॉलिटिकल रिनेसा भी कहते हैं, और इन सभी में हमने जैसा कि पहले पढ़ चुका है कि कुछ ऐसे नाम हैं जिनको हम हमेशा याद रखेंगे कि इनकी वजह से भारत में राजनीतिक जागरण होने लगा था, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक एक्सेट्रा। और इन सभी ने सोच कर विचार कर इतने बढ़िया बातें कही, इतनी अवेयरनेस सोसाइटी में लेकर के आए, जिसकी वजह से 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में अब हमारी कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने की बात होने लगी थी। क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल्स थे इंडिया के, उनको ये रियलाइज हो गया था कि अगर रूल हमारे ऊपर हो रहा है तो रूल करने वाले भी हम इंडियंस ही होने चाहिए। और इसीलिए उन लोगों ने संविधान निर्माण की मांग और स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी। 1922 में महात्मा गांधी ने सबसे पहले संविधान निर्माण की मांग प्रस्तुत की, और वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पर यानी 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में कई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जिसमें कि आपको डिफरेंसेस देखने को मिल सकते थे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर कलर, ऑन योर वेल्थ। उस टाइम पर वोट करने का जो राइट था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू हमें मिला था, वो सबको नहीं था, केवल कुछ लोगों को ही मिला था जिनके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेल्थ होती थी। इसको छोड़ करके अगर आप अंग्रेज हैं तो आपके ऊपर इंडिया के जजेस कोई कानून नहीं बना सकते, आपके ऊपर केस नहीं चला सकते, लेकिन इंडियंस के ऊपर गोरे जज जरूर केस चला सकते हैं, उनको कोर्ट में बुला सकते हैं। तो ये सब जो डिफरेंसेस थे, इनको देखने के बाद यहाँ के इंडियन इंटेलेक्चुअल्स को फील हुआ कि इनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जिसमें कि सबको एक बराबर के राइट्स मिल सके। और इसीलिए 1922 में महात्मा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की डिमांड को रिप्रेजेंट किया। इसके बाद 1925 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें कि ये बात सामने रखी गई कि संविधान निर्माण यानी कॉन्स्टिट्यूशन अब फ्रेम होना चाहिए। इसके बाद 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियंस की हेल्प चाहिए थी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के जो फौजी थे वो बहुत बहादुर थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि वो भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी तरफ से भेज सके। और इसीलिए 1940 को एक प्रस्ताव आया जिसको हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, जिसको इंग्लिश में अगस्त ऑफर भी कहते हैं। और इसमें सबसे पहली बार ब्रिटिशर्स ने हम इंडियंस की जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की, उस डिमांड को मान लिया। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सबसे पहले अंग्रेजों ने भारतीयों की संविधान निर्माण की मांग को कब स्वीकार किया? तो आपका जवाब होगा 1940 अगस्त प्रस्ताव। इसके बाद जुलाई की बात है 1945 की, 5 साल बाद। अगस्त ऑफर कब आया? 1940। इसके बाद 5 साल के बाद 1945 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की नई सरकार जो है वो सत्ता में आई। कहने का मतलब है वहां पर जब इलेक्शंस हुए तो 1945 में गवर्नमेंट चेंज हो गई और एक ऐसी गवर्नमेंट आई इंग्लैंड में जो कि वहां के लेबर्स को, जिनको हम मजदूर कहते हैं, उनको रिप्रेजेंट करती थी। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर मजदूरों की सरकार होगी या उनको रिप्रेजेंट करने वाली सरकार होगी तो वो मजदूरों के हक में बात करेगी। तो शायद इसी वजह से वहां की जो नई सरकार यानी लेबर पार्टी की नई सरकार बनी, उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने और यानी इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के साथ साथ यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का भी एक हिंट दिया। कोई प्रॉमिस नहीं किया, कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने कुछ ऐसा कहा जिससे कि हम इंडियंस चुप रहें या फिर कोई दंगा फसाद न करें, लेकिन उन लोगों ने ये हिंट दे दिया कि वो इस बात पर सोच रहे हैं कि अब इंडिया को इंडिपेंडेंट किया जाए और एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर फ्रेम कराया जाए। ये कब की बात है? तो ये बात है 1945 में इंग्लैंड में जब लेबर पार्टी आती है। इसके बाद बात है मार्च की 1946 की, यानी एक साल के बाद ही सरकार के 3 सदस्यीय आयोग भारत भेजे, यानी उसी लेबर पार्टी ने 3 मेंबर जिसके 3 सदस्य होंगे, 3 लोग होंगे, ऐसा कमीशन इंडिया भेजा। कब? 1946 में, जो कि उनके इलेक्शन के एक साल के बाद की ही बात है। और उस कमीशन को, उस आयोग को हमने कैबिनेट मिशन का नाम दिया। ये नाम हमने नहीं दिया था, इस आयोग का नाम ही था कैबिनेट मिशन। और इसी कैबिनेट मिशन की प्लानिंग थी कि अब इंडिया में एक ऐसी सभा बनेगी, असेंबली बनेगी, जो कि यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। और इसने भारतीय संविधान का निर्माण किया। मिशन यानी कैबिनेट मिशन का ये मानना था कि संविधान सभा के गठन की सबसे संतोषजनक स्थिति यह होती है कि उसका गठन वयस्क मताधिकार द्वारा चुनाव के माध्यम से किया जाए। यानी कमीशन वॉज इन फेवर ऑफ इलेक्शंस जिसमें कि अडल्ट फ्रेंचाइजी प्रैक्टिस होगी। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि वयस्क मताधिकार हम किसे कहते हैं, तो इसका मतलब कि हर वो इंसान वोट करेगा जो कि 18 ईयर्स से ज्यादा का होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम, कब हम बात कर रहे हैं 1946 की, जब कैबिनेट मिशन इंडिया आया था, तब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का डिमांड किया था। और इसी डिमांड को लेकर के मुस्लिम लीग ने इतना वॉयलेंस स्प्रेड कर दिया जिसकी वजह से यहाँ यानी इंडिया का जो कानून व्यवस्था था, सिस्टम था, इन सभी में खराबी आ गई। जैसे लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने में उस टाइम प्रॉब्लम होने लगी। और इसीलिए 1935 में भारत शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मीडियम से इंडिया के कई सारे रीजन्स में विधानसभा गठन शुरू हो गया। और जो मेंबर्स इस विधानसभा में इलेक्ट हुए थे वो सभी निर्वाचित हुए थे। और फिर कैबिनेट मिशन ने इन सभी निर्वाचित सदस्यों को ये राइट दिया था कि वो अपने अपने रीजन में संविधान सभा के लिए यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मेंबर्स का निर्वाचन करें या सिलेक्शन करें। ऐसे तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो 10 लाख लोगों पर संविधान सभा का 1 सदस्य होना निर्धारित हुआ था। कहने का मतलब है कि एक वो इंसान 10 लाख पीपल को रिप्रेजेंट करेगा। और आज भी जो हमारी डेमोक्रेसी है वहां पर रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, जहां पर एक अमाउंट ऑफ पीपल जो है वो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां पर भी उस समय में कैबिनेट मिशन ने कुछ ऐसा ही सिस्टम बनाया था। इसके अलावा उस टाइम का जो हमारा भारत था, यानी जो इंडिया था, वो दो भाग में बटा हुआ था। ये तो हम सभी जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक पार्ट था ब्रिटिश इंडिया का, ब्रिटिश रीजन्स का, और दूसरा था देशी रियासतों का, जहां पर बड़े बड़े राजा राजवाड़े राज किया करते थे। वैसे तो ये जो देसी रियासतें थीं, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं थीं, कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही काम करती थीं। लेकिन फिर भी कहने के लिए यहाँ पर राजे राजवाड़े उनको रिप्रेजेंट किया करते थे। और जो ये देसी रियासतें थीं, इनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सेम मेजरमेंट रखा गया। लेकिन वहां पर क्योंकि विधानसभा नहीं थी, तो इसीलिए वहां पर उनका मनोनयन होना तय हुआ। और इस तरीके से जा करके कहीं भारतीय संविधान सभा में दोनों तरह के सदस्य थे, यानी उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी उसके जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड भी थे प्लस सेलेक्टेड भी थे, जिनको हम निर्वाचित कहते हैं। तो निर्वाचित का मतलब कि वो इलेक्टेड थे। और इलेक्शन कहाँ पर होगा? जहां पर विधानसभा होगी। प्लस जो मनोनीत थे, यानी वो मेंबर्स जो कि किसी के थ्रू सेलेक्ट किए गए थे, क्योंकि उनका इलेक्शन होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऐसे रीजन्स में विधानसभाएं काम नहीं कर रही थी, तो वो लोग सेलेक्टेड कहलाते थे। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दोनों इलेक्टेड और सेलेक्टेड दोनों तरह के मेंबर्स थे। जो संविधान सभा बनी थी, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन एंड इलेक्शन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स वाज 389। यानी उस टाइम पर जो संविधान सभा का निर्माण होना था, उस समय 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे, जिनमें से 296 यानी 296 ब्रिटिश भारत के थे, यानी इंडिया का वो रीजन जहां जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करती थी, इसको हम ब्रिटिश भारत कहते थे। तो ब्रिटिश भारत के टोटल 296 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। फिर वो रीजन जहां पर देसी रियासतें थी, यानी जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट इनडायरेक्टली रूल करती थी देसी रियासतों की मदद से, तो वहां के टोटल 93 मेंबर्स यानी 93 सदस्य संविधान सभा में आए थे। इसके अलावा 1946 में यानी 1946 को संविधान सभा के लिए 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए, यानी जितनी विधानसभाएं थी वहां पर 296 प्लेसेस पर इलेक्शंस पॉसिबल हुए। कब? 1946 में। उन 296 प्लेसेस में से 208 जो प्लेसेस थी वो कांग्रेस को गई, यानी 296 सीट्स पर 208 जो सीट्स मिली थी वो कांग्रेस को मिली थी, यानी कि 208 जगहों से लोगों ने कांग्रेस को वोट किया था, जबकि मुस्लिम लीग को केवल 73 स्थान हासिल हुए, यानी दे गॉट ओनली 73 सीट्स। इसका मतलब ये हुआ कि 296 प्लेसेस में से केवल 73 ऐसे प्लेसेस थे जहां के लोगों ने मुस्लिम लीग को चुना था। इसके बाद बहुत सारे जो छोटे छोटे पार्टीज थी, छोटे छोटे दल थे, वो अलग अलग डिवाइड हो गए। उधर यानी कि ऑन द अदर साइड 3 जून 1947 को एक और प्लान आता है। कब आता है? 3 जून 1947 को। इस प्लान को हम हिंदी में माउंट बेटन योजना कहते हैं और इंग्लिश में माउंट बेटन प्लान के नाम से जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इसी माउंट बेटन प्लान ने हमारी कंट्री में कम्युनल बेसिस पर डिवीजन को फिक्स किया, यानी हमारे देश में सांप्रदायिक आधार पर विभाजन तय किया। अब ये सांप्रदायिक आधार क्या है? तो ये है कि अगर देश का कोई व्यक्ति जो कि अपने धर्म को लेकर के एक अलग क्षेत्र बनाना चाहता है या फिर देश से विभाजित होना चाहता है, तो माउंट बेटन प्लेन ने जो कि 1947 में आया था उसने इसको मंजूरी दे दी। और इसी माउंट बेटन प्लान के चलते मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान बनाने की डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और एक नई कंट्री यानी पाकिस्तान का फॉर्मेशन 1947 में ही हो गया। और इसी वजह से, क्योंकि मुस्लिम लीग तो अब इंडिया से हट करके पाकिस्तान चली गई जो कि आज का पाकिस्तान है, तो इसीलिए जो पहले की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी यानी जो संविधान सभा था, यानी जिसके बारे में हमने देखा कि 296 ब्रिटिश इंडियन की सीट्स थी और 93 सीट्स देसी रियासतों की थी, तो ये जो इलेक्शन सिलेक्शन हुआ था वो अब रद्द हो गया। क्यों? क्योंकि माउंट बेटन प्लेन ने इन पाकिस्तान बनाने वालों की डिमांड यानी मुस्लिम लीग की डिमांड मान ली थी और मुस्लिमों को एक अलग देश बनाने की परमिशन भी दे दी थी। और इसीलिए एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और इस बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान सभा का जो पुनर्गठन हुआ था उसमें टोटल 324 सीट्स का निर्धारण हुआ। अंतिम रूप में 284 यानी 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर अपने सिग्नेचर्स दिए, यानी कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अब हमारा खुद का भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होगा। इसके बाद जो देसी रियासतें थीं वो अलग अलग टाइम पर संविधान सभा में शामिल हुई, क्योंकि जब माउंट बेटन प्लेन आया और उसने सांप्रदायिक आधार पर यानी कम्युनल बेसिस पर डिवीजन एक्सेप्ट कर लिया, तो कई ऐसी रियासतें थीं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट न करके अपना खुद का एक बेस तैयार करना चाहती थी, लेकिन जब उनका ये इंटेंशन फुलफिल न हो पाया तब उन लोगों ने धीरे धीरे करके भारत की संविधान सभा यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। और इस तरीके से राजस्थान की जो रियासतें थीं उनमें से टोटल 13 मेंबर्स ने संविधान सभा में पार्टिसिपेट किया। लेकिन हैदराबाद उस समय की एक ऐसी रियासत थी जिसने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव संविधान सभा में नहीं भेजा और पॉसिबिलिटी ऐसी मानी जा रही थी कि शायद हैदराबाद जो है वो खुद का एक स्टेट फॉर्म करेगा और इसीलिए हैदराबाद ने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं भेजा था। तो बच्चों, आज का हमारा ये जो डिस्कशन था वो यहीं तक चल पाएगा क्योंकि समय की कमी हो रही है, लेकिन हम अगली क्लास में मिलेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे सेम इसी टॉपिक को समझते हुए, देखेंगे कि हमारे संविधान सभा में आगे क्या क्या तरक्कियां आईं। तब तक के लिए धन्यवाद।